ராதாகுண்டம் குருவரமஹோ ராதிகா மாதுவாசம் ப்ராப்தோ யஸ்ய பிசதி க்ருதயா சூகுரும் கந்து வஞ்சா கல்பதருகஸ்ய கிருபா சிந்துப்யைரச பதிதானம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ ய கிருஷ்ண பிரேம பிரதாயே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைத்தன்ய நம்மே கௌரத்துஹே குரவே கௌரசந்திராய ராதிகாயை தாலயை கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண பக்தாய பரபக்தாய நமோ யம் ப்ராப்ரஜந்தம் அனுபேதமபேத கிருத்யம் ஜிஹாத்தேத்தன்மயாஸ்மி நிவாமி பிரயா விஜயராதே மாம் சரணம். हम लोग 148 श्लोक प्रेमा प्रियो बने करी बने चार दुष्टा इसके व्याख्या सनातन गोस्वामी के पिता का तात्पर्य हम लोगों ने समाप्त किया था और नायं सियो अंग इसके पहले ही व्याख्या कहीं की गई है, पहले हमने बतलाया था। इसमें इन्होंने बतलाया कि लक्ष्मी जी का वह सौभाग्य नहीं उनके चरणों में सब समय सेवा करती हैं, तो स्वर्ग जो सीता स्वर्ग की स्त्रियों की अर्थात स्वर्ग की लक्ष्मियों की जो पद्मगंधा है, ये और दूसरी स्त्रियों की तो बात ही क्या है, क्योंकि गोपियों को कृष्ण का वह प्रसाद मिला जो लक्ष्मी इत्यादि को नहीं मिल सकी। रात्रोत्सव में कृष्ण उनके गले में हाथ देकर लब्धास्ती संग झूल गए कंठ में हाथ देकर और उनको वह आशीष गोपियों को आशीष दिया, वह आशीष प्राप्त हुआ जब उद्गाय ब्रजसुंदरी ना, और किसी को वह प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए गोपियों की सर्वश्रेष्ठ महिमा इन्होंने यहां पर बतलाया। इसके बाद ही में वो कह रहे हैं आशा महो चरण चरण रेण दिशाम हम श्याम बिंदावनी किमत गुण लतौ सधीन जादुस्तज सजन आज पथन के हित्वा भेजे मुकुंद पद्मे सुतभि ब्रमिज्ञम। अब गोपियों की महिमा बतला और भी अभी कुछ विशेष बातें यहां पर बतला रहे हैं। पहले हमने जो बतलाया केमा स्त्रियों कहां ये बनचरी गोपियां और कृष्ण में कहां परमात्मा रूढ़ भाव, ये कृष्ण की अद्भुत महिमा है कि जो विचारी व्यक्ति भी यदि उनका भजन करे तो श्रेयस्तनों से उनका कल्याण हो जाता है। कैसा भी व्यक्ति, ये कृष्ण का यहां पर दिखलाया। किंतु जो यथार्थता बात नहीं है, हमने इसको बतलाया ये कैसे गोपियों की महिमा और कैसा ये क्या गोपियों की महिमा यहाँ पर बतलाया था, वो व्यभिचार दुष्टा और बनचरी हैं, न क्या है किसके लिए यहाँ पर ये बनचरी और व्यभिचार दुष्टा किसके लिए कहा गया, किसके लिए कहा गया, किसका विशेषण है तुम बतलाओ। हमने उस दिन जो व्याख्या की, कहाँ व्यभिचारी, यहाँ पर बनचरी व्यभिचार दुष्टा है और बनचरी बतलाया, ये किसके लिए, किस चीज का विशेषण कौन बतलाएगा? तुम लोग पीछे लेकर बैठते हो, आगे बैठे आइए। तो आप स्वरूपानंद ना क्या नाम है, सब पीछे बैठेंगे, जो पीछे बैठेगा हम उठ करके दो दो कान मल करके अच्छी तरह से पीछे देंगे। इधर आओ, क्या नाम है तुम्हारा? परमेश्वरी ना परमेश्वरी। इधर सामने आओ, सामने बतलाइए। तो 10 घंटा जो उस दिन व्याख्या किया है, वनचरी और व्यभिचार दुष्टा किसके लिए है? हाँ, ये तो सुनते हैं बुद्धिमान बनते हैं, मन से नहीं सुनने से यही होता है स्थूल बुद्धि। शारीरिक बल का भक्ति में कोई भी महत्व नहीं, भजन करते करते जब निष्ठा रुचि होगी वो बुद्धि स्थिति को पकड़ेगी। बताओ किसके लिए व्यभिचार दुष्टा और बनचरी कहा गया? ये किसका विशेषण है? कहेगा जी महाराज जी तो पाठ नहीं करते बतलाते नहीं, सुनेगा नहीं तो कैसे होगा? आप तो बस मुझे सुने ना, बतलाइए। तो हाँ हाँ ठीक, ऐसे कह देने कि हमने सुनाई है। उस दिन बहुत बीमार थे, 5 दिन व्याख्या की यहाँ बैठ करके, अभी इसको कहेंगे ये बतला देगा, ये हिंदी जानता भी नहीं है कभी। व्हाट यू टेलिंग? यस एवरीथिंग, सो मच थैंक यू। वृंदावन में भ्रमण करते हुए राधा कृष्ण की सेवा करती हैं, राधा जी की सेवा करती हैं, और कहां उनका परमात्मा आत्मा के लिए आत्मा कृष्ण में रूप भाव, और कहां मैं और संसार की दुष्ट स्त्रियां जो अपने को पतिव्रता समझती हैं वो व्यभिचारी हैं, और बनचरी माने धर्म से कोई संबंध नहीं ऐसी है। अरे गोपियों की तो बात क्या,
नन्नेश्वरो अनुभजते, ऐसे कृष्ण का यदि कोई अभिदूषण मूर्ख व्यक्ति भी, अज्ञानी आदमी भी, नहीं जानते ये भी अमृत का सेवन करे, मंत्र का सेवन करे तो उसका कल्याण हुआ था, फिर कृष्ण का सेवन करेगा नहीं होगा, जरूर हो जाएगा। आशाम हो चरण रेणी दिशाम हम श्याम वृंदावने स्मत गुलम लपौष भूम जा दुष्कजन सजन आर्य पथंच हित्वा भेजे मुकुंद पदवेन सुखभे निर्विज्ञा। जिन गोपियों ने अपने दुष्कज जिसको छोड़ा नहीं जाता, ऐसे अपने स्वजनों को, बंधु बांधवों को, पति और आर्यपत को, पातिव्रत धर्म इत्यादि को छोड़कर जो लिखेगा उसको समझ में नहीं आएगा, ये समझ रखो, क्योंकि वो समझ नहीं रहा है, वो लिखने पर जा रहा है इसलिए समझ ही में नहीं आया, लाख लिख ले नहीं होगा। मन एक है, उधो मन न भयो दूसरी, समझ करके फिर कोई थोड़ा सा नोट कर ले दूसरी बार, अब जिस समय बोल रहे हैं तो दो एक लिखेगा और बाकी सब हवा में उड़ जाएगा। जिन गोपियों ने दुष्ट अपने स्वजनों को, पति बंधु बांधव और आज्य पथ को छोड़कर, जिनको श्रुतियां खोज रही हैं, ऐसे गोविंद की पदवी को की भजना की थी, वृंदावन में उन्हीं गोपियों की चरण धूलि का सेवन करने के लिए तीन लता गुल्म में से किसी एक में भी मेरा जन्म हो जाए, इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूं या प्रार्थना करती हूं। ये उद्धव जी कह रहे हैं, उन गोपियों की चरण धूलि की सेवा करने के लिए मैं गुल्म लता विशेष करके छोटी छोटी घासों को जिस पर वो गोपियां चलें, इसी के लिए ये प्रार्थना करते हैं, ये एक विशेष प्रार्थना है। भजन करने वाला व्यक्ति इन भावों को अपने मन में चिंतन करेगा, इसका नाम है भजन। यहां डर के मारे बैठते हैं जब आ गया, और जहां यहां से हटा सब भूल गए, सांसारिक चिंता आ जाएगी, ये भजन नहीं। यहां पर जो कहा उसको फिर से चिंतन किया, क्या क्या हुआ, उन सब अर्थों को लेकर के विचार करें, ऐसे ही हमारे हृदय में प्रार्थना यदि हो तो कुछ हो सकता है, ये भजन का अंग हो जाएगा। इसलिए सनातन गोस्वामी ने कृपा करके इनका संग्रह करके दिया है, हम लोगों के भी भाव ऐसा। इन सब के लिए पहले उपदेशामृत के जितने श्लोक हैं भाई, उसका अनुशीलन करो दिन रात, जो अनुकूल है ग्रहण, प्रतिकूल को त्याग करो। अनर्थ जहां जितना दूर होता जाएगा ये समझ में आएगा, और अनर्थ गजगज में दूसरों के दोष दिख पड़ेंगे तब तक भक्ति से कोई संबंध नहीं। दूसरों का दोष मत देखो, अपने की तरफ में देखो, जो हमारी रुचि नहीं हो रही है, इतना समझाने पर भी समझ में नहीं आ रहा, इसलिए अपने तरफ में देखो। अब व्याख्या जी कर रहे हैं सनातन गोस्वामी, उद्धव जी कह रहे हैं गोपियों का बहुत ऊंचा भाव देखा, गोपियों का कृष्ण के प्रति भाव देखा, क्या भाव देखा, गोपियों ने पूछा कि तुम कृष्ण के निश्चित रूप में ही कोई सेवक है, हमारे नाक सुगंध लेकर के समझ लिए, क्योंकि ऐसा सुगंध किसी में नहीं होगा, तुम्हारे जो कपड़े इत्यादि जो धारण किए हुए हो ये उन्हीं का है, इसलिए हम लोग गलत हमारे नाक नहीं कह सकते, सुगंध से समझ गए। अच्छा ये बतलाओ पूछा, जो प्रीति ये होती है दो प्रकार की, निस्वार्थ प्रीति जहां होती है स्वाभाविक ही, वो कभी टूटती नहीं जितना भी कोई कारण में, कुछ भी कारण हो जाए। प्रीति टूटने का लाख कारण उपस्थित होने पर जब प्रीति नहीं टूटती तो ये निस्वार्थ। जो प्रीति अपना स्वार्थ मिट जाने के बाद में मिट जाती है वो लौकिक प्रीति, वो यथार्थ प्रीति नहीं है। अब इसी को गुरु में और वैष्णव में भी लगा लो। जो अभी शिष्य हैं, गुरु और वैष्णव से अपना जब तक स्वार्थ कुछ है तब तक तो लौकिक स्वार्थ में रहे, और जहां वो दूर हो गया तब प्रीति टूट गई। और जिस शिष्य का निस्वार्थ कृष्ण प्रेम पाने के लिए संबंध है गुरु से, आत्मा और अपने जीवात्मा का और गुरु के, उससे उसकी प्रीति लाख टूटने के कारण होने पर भी वो प्रीति नहीं टूटेगी, बढ़ती जाएगी। उद्धव देखो, भौरा प्रीति करता है फूलों से, बार बार उसी के ऊपर में मर आता है, आज जहां उसका रस ले लिया उड़ करके दूसरी जगह चला जाएगा। ये भी नहीं देखागा कि ये अच्छा पुष्प है या खराब पुष्प है, अच्छे को छोड़ करके बुरे पर भी जा रहे हैं, स्वार्थ है इसलिए। और जब रस ले लेता है उसमें रस नहीं होता तो उसे कोई प्रीति नहीं। वेश्या का पुरुषों से तभी तक संबंध जब तक पैसे का है, फिर पैसा नहीं मिलेगा संबंध टूट गया। चिड़िए का वृक्ष से तभी तक संबंध है जब तक वृक्ष हरा भरा फलदायक है, यदि वह सूख गया जल गया कोई संबंध नहीं। ये सब प्रति स्वार्थमयी है, चंचला है, ये प्रति नहीं है। हम लोगों की प्रीति कृष्ण के साथ और हम कृष्ण का हम से निस्वार्थ प्रीति थी, फिर टूट कैसे गई ये बतलाओ। उद्धव जी मुख ताकते रह गए, कभी टूट ही नहीं सकती। कई शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में ऐसा नहीं है, जिन निस्वार्थ प्रीति होती है, निस्वार्थ रूप में गुरु और शिष्य का संबंध होता है, वो कभी नहीं टूट सकता, वो उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाएगी। फिर ये प्रीति कृष्ण के साथ में निस्वार्थ प्रीति थी, ये क्यों टूट गई? उद्धव जी कुछ उत्तर नहीं दे सके, नहीं कुछ दे सके। और इसके बाद में उद्धव जी की का जो संदेश गोपियों ने सुना उससे जीवित रहने की आशा भी समाप्त हो गई, अब कृष्ण नहीं आएंगे उन्होंने समझ लिया। और तब हानाथ ब्रजनाथ, इसके बाद में समुद्धर बिगिनाय नवाद, हमें इस बिरह समुद्र से अब उद्धार हमारा कीजिए, उबार लीजिए, ये कह करके रोने लगी। श्रीमद् भागवत के उस शब्दों के ऊपर से मालूम पड़ता है कि गोपियां शांत हो गईं और उसके उपदेश से उनको शांति मिल गई, सांत्वना मिल गया। किंतु ऐसा नहीं, गोपियों का बिरह ज्वर और अधिक बढ़ गया उस संदेश से। कृष्ण बाई ने नहीं समझ लिया और जीवित रहने की आशा भी समाप्त हो गई, मूर्छित हो गई, हा हा करती गई। उद्धव जब इनका यह प्रेम देखा तो अपने को धिक्कार देने लगे कि कहां ये गोपियां प्रेम आय स्त्रियों और कहां मैं, बहुत अपने को धिक्कार देने लगे। हमारा कृष्ण के प्रति प्रेम ही नहीं है, मैं समझता था कि मैं भक्त हूं, और मैं समझ गया कि किसी भी भक्त की श्रेणी में मैं नहीं हूं, प्रेमी भक्त की श्रेणी में नहीं हूं, समझ गए। अपनी त्रुटि नहीं समझे कि मैं ऐश्वर्य कोटि का भक्त हूं, ये भगवत्ता का ज्ञान हमें रहता है इसलिए ये प्रेम नहीं आ रहा है, इसको ये अभी तब तक नहीं समझे। इसलिए यहां पर कह रहे हैं उद्धव जी कोई प्रार्थना अलौकिक करना चाह रहे हैं। हियर यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल थिंग्स नॉट हु विल एक्सप्रेस सुबल तथा आफ्टर माई क्लास ही विल डिस्क्राइब। हियर उद्धव इज थिंकिंग हिमसेल्फ सो मच डिग्रेडेड and thinking Gopi is the highest top of prem in Gopi. Now he is thinking how to have a very glorious thing. कैसे हम क्या प्रार्थना करें इन गोपियों से ये सोचकर कह रहे हैं ओहो अत्यंत खेद से उल्लास से नहीं कहीं कहीं उल्लास में होता है यहां पर बड़े खेद से कह रहे हैं महालक्ष्मी इस प्रकार ब्रज सुंदरियों की सर्व उत्कृष्टता उन्होंने दिखलाई किस श्लोक के द्वारा वो है ना वृंदावनम धन्य है गोपियों के लिए एता परां तनुभितो भो गोप बद्धो गोविंद एव अखिलात्मनि रूढ़ भावा वांछंत जद भी भवो भव वयंच वयंच किम ब्रह्म जन्म भी अनंत कथा रस। गोपियों की अद्भुत महिमा का वर्णन किया धन्य है पृथ्वी जिसमें वृंदावन और पृथ्वी धन्य वृंदावन धन्य जिसमें ये गोपियां कृष्ण के लिए कृष्ण जन्म के लिए धन्य नहीं बतलाया अतः सब जगह वृंदावन को धन्य माना गोपियों के लिए तो गोपियों की सर्वश्रेष्ठता मन ही मन में उपलब्धि कर इसलिए कृष्ण का ये जो महाभाव है इनको देखकर सर्वोच्चतम भाव का विषय का वर्णन के द्वारा गोपियों के संग की महिमा बतला रहे हैं। ये मैं मुझे अंततः ये तो मेरी समझ में आया ये गोपी प्रेम इतना ऊंचा है मैं समझ गया नहीं तो मैं नहीं समझता मैं अपने को ही सबसे बड़ा समझ रहा था आज मैं समझा गोपियों की और उनके संग की महिमा ये मैं ऐसा व्यक्ति इस भाव को अब समझ रहा हूं कि अब कृष्ण प्रेम किसे कहते हैं गोपियों का प्रेम कितना ऊंचा है अब वो समझने लग गए उस संग की महिमा। हम लोग संग की महिमा नहीं समझते गुरु जी की कृपा है ऐसा समझिए। स्वामी जी जब तक थे भक्ति वेदांत अथा प्रभुपाद जब थे तो उनके संग में कितने आदमी थे बड़े बड़े लोग एक साधारण पढ़ा लिखा व्यक्ति भी नहीं और बड़ी बड़ी सभाओं में दिव्य जय करता था भजन पारायण हमारे हैं ऐसे कितने सिद्धांती महाराज भी वो तो कुछ पढ़े लिखे थे कितने निर्भीक वक्ता और साधन भजन करने वाले गुरु जी थे इसलिए हम लोग उनके साथ में थे अरे भी गुरु जी हैं इसलिए कुछ लोग यहाँ आ रहे हैं और किसी भी मठ में जाओ देखो तो जो दो एक आदमी है कि डफली बजती है कि नहीं आरती के समय में एक हाथ से ऐसे कर रहे हैं घंटा बजा रहे हैं और आरती कर कोई दर्शन करने वाला भी नहीं। इस संघ में कुछ सीखो इसलिए करें संघ की महिमा ये बतला रहे हैं संघ की महिमा के द्वारा स्वयं प्रेम विशेष से पूर्ण हुआ निज हृदय मध्य को प्रेम विशेष से परिपूर्ण होकर के आज एक दुर्लभ प्रार्थना कर रहे हैं उद्धव जी संघ की महिमा से। यदि उद्धव जी ब्रज में नहीं आते तो आशा महो चरण रेणु शाम हम और जो प्रार्थनाएं हैं विरहेन में महाभागा विरहेन अनुग्रह किया आप लोगों ने, ये शब्द कभी बोल नहीं सकते थे हम लोग। अपने गुरु जी की सेवा निष्कपट रूप में नहीं करते, प्राणों का बलिदान नहीं करते, तो ये सब जो बातें कह रहे हैं समझ रहे हैं, कभी भी नहीं समझता गांव में रहता साधारण रूप में। जैसे आदमी जन्म लेते हैं मर जाते हैं आहार निद्रा भय मैथिल में, ऐसे ही मैं भी रहता। ये समय संग की मैया गुरु जी के संग के प्रभाव से कहां एक निरक्षर व्यक्ति संसार में रचने पचने वाला आज जगत का गुरु बन रहा हूं। लोग गुरु गुरु कहते हैं उनके दो चार उपदेशों को पालन करने से। आप लोग भी ऐसे ही यदि निष्कपट होकर के पालन करेंगे तो ऐसे हो जाएंगे। कोई प्रार्थना दुर्लभ, सबसे बड़ी दुर्लभ क्या प्रार्थना है? संसार में सारे सुख मिल जाए, ये प्रार्थना है। स्वर्ग में सुख मिल जाए उससे भी बड़ा मुक्ति का सुख है, उससे भी बड़ा बैकुंठ का कृष्ण नारायण की सेवा, उससे भी दुर्लभ रामचंद्र जी की सेवा, उससे भी दुर्लभ कृष्ण की द्वारकाधीश कृष्ण की सेवा रुक्मिणी सत्यभामा की, उससे भी बढ़कर के ब्रज में दास भी, उससे भी बढ़कर के सखा, उससे भी बढ़कर के बात्सल्य, उससे भी इन गोपियों का प्रेम। यदि उसके लिए आकांक्षा हो प्रार्थना हो, महाप्रभु कणगत जितने भी वैष्णव आए हैं इसीलिए आए हैं। यदि ऐसी भावना नहीं उठती है और केवल सदाचार देख रहा है तो ये भजन नहीं है। धर्म और धर्म दोनों को अलग कर दिया, न धर्मं न अधर्म, वो गौड़ीय वैष्णवों का प्रतिपाद्य नहीं है। कृष्ण प्रेम है समझो, ब्रज पर प्रेम। अब वो प्रार्थना कर रहे हैं अर्थात चिरकाल कृष्ण सेवा के फल स्वरूप। मैंने कृष्ण की सारा जीवन कृष्ण की सेवा मैंने की अंतरंग रूप से रह करके, आज उसी के वजह से गोपियों का संग मिल गया और गोपियों का संग मिल से हमारे हृदय में ऐसी लालसा उत्पन्न हो रही है, प्रार्थना हो रही है क्या आशामहो इत्यादि के द्वारा, इन श्लोकों के द्वारा, तीन श्लोकों के द्वारा या दो हैं। अहो मैं वृंदावन में उन गोपियों की चरण धूलि को सेवन करने वाले घास गुल्म और लता, इनमें से कोई एक यदि जन्म ग्रहण कर सकूं तो हमारा परम सौभाग्य होगा। गोपी होने के लिए नहीं मांगा, ये मेरा सौभाग्य नहीं है। उनकी झोली हमारे सिर पर पड़ जाए किसी प्रकार से, गोपियों की, कैसे आगे बतलाएंगे। अर्थात वृंदावन में गोपियों के चरण रेणु को प्राप्त होने वाले घास तीर्ण गुल्म, तीर्ण किसको कहते हैं, दुब घास इत्यादि जो नीचे रहती है, पैरों के नीचे रहती है, गुल्म किसे कहते हैं, कुछ दिनों के बाद में सूख करके झड़ जाते हैं, इनको गुल्म कहते हैं, आदि लता इत्यादि वो जमीन से चल करके यदि सहारा न मिले तो वो क्या जमीन में ही पड़ी रहेगी, और यदि सहारा मिल गया ऊंचा हो गया, ऐसा नहीं चाहते इसलिए वृक्ष नहीं कहा, ऐसी लंबी लंबी ऊंची वाली लताएं नहीं कहा, जो गोपियों की धूलि का सेवन करें। कोई भी एक घास तीर्ण इत्यादि, घास भी तरह तरह की होती है, लाखों तरह की होती है ब्रज में, उनमें से कोई एक का जन्म लेने की मैं प्रार्थना कर रहा हूं। किस लिए? अब यहां पर फिर अहो उल्लास आ जाएगा, उल्लास के साथ में करें, गोपी की चरण धूलि सेवन करने का मुझे सौभाग्य आएगा। अवसर के वस्त्र पुनः उनके महात्मा को आधे श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। या दुष्टज दुष्टजन आर्य पथंच हित्वा भेजे मुकुंद पदवीं श्रुतभीम विज्ञान, जो कि बड़ी कठिनता से त्याग किया जा सकता है, साधारणता से त्याग नहीं किया जा सकता। घर में स्त्री को त्याग करना सहज है, किंतु जहां पर रह रहे हैं वहां पर स्त्रियों का त्याग करो तो मन से बहुत से लोग स्त्रियों को छोड़ करके आ जाते हैं और आ करके त्याग करके भी आश्रम में रह करके फिर स्त्रियों की तरफ में नजर लग जाती है, उनके प्रति आसक्ति आ जाती है। किसी वस्तु में भी आसक्ति होना यही स्त्री का भाव है, केवल स्त्री का नहीं, स्वरूप नहीं, केवल किसी भी वस्तु के प्रति आसक्ति होना यही, और अपने को भोक्ता और उस वस्तु को भोग्या समझ करके, इस दृष्टि का नाम स्त्री दर्शन है। चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, स्त्रियों का भी किसी भी वस्तु के प्रति भोक्ता का अभिमान अपने और उसमें भोग्या, पुरुष के प्रति हो, एक साड़ी के प्रति हो, खिलौने के प्रति हो, किसी वस्तु के